ఆత్మజానుదర్శనం అసక్తిరణశ్వంగా పుత్రధారా గృహాంశు నిత్యం చ సమచిత్తత్వం ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు మయి చాన్వియోగేన భక్తిర్వ్యభిచారిణి వివిక్తదేశసేవత్వం అరతిర్జన సంశది ఆధ్యాత్మజ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థదర్శనం ఏతజ్ఞానమిది ప్రోక్తం అజ్ఞానం యత్తదమోహ. ఇస్కా తాత్పర్య కా పహలా లైన్ పడియే, పహలా ఫస్ట్ లైన్ ఈ శ్లోక కా జో తాత్పర్య హై ఉస్కా పహలా లైన్.
कभी कभी अल्पक लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को प्राण चेत से अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं.
तो कुछ लोग ये जो ज्ञान के बातों को जो उल्लेखन किया गया है, लोग सोचते हैं कि ये जो विधि है वो कार्य क्षेत्र एक तरीके से, दूसरे शब्दों में भौतिक करके समझते हैं, अस्तित्व में वो नहीं है. अगले लाइन करिए, नेक्स्ट लाइन.
लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया
है. हाँ, ये ज्ञान की विधि है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज. असली एक ज्ञान की विधि है.
यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है.
वेरी गुड. अगर इस ज्ञान की विधि अभी 8 से 12 श्लोकों में उल्लेखन किया है, जो व्यक्ति अगर जान लेता है वो निश्चित रूप में भगवान के पास वो पहुंच जाता है, भगवान रण सत्य को जानने के.
ये इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है.
ये जो उल्लेखन किया गया है वो क्या है, 24 तत्व क्या है, क्षेत्र. ये क्षेत्र का विकार नहीं है. क्षेत्र का विकार क्या है, 24 तत्वों का विकार, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ठीक है, ये क्षेत्र का विकार है. आगे
ये वास्तव में तत्वों के पास से बाहर निकले करने का साधन है.
बल्कि ये जो ज्ञान की विधि जो वर्णन हुआ है 8 से 12 श्लोकों में, ये क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से निकलने का विधि है, यानी मुक्ति प्राप्त करने की विधि है. आगे
देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है. और यहां पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वो इससे बाहर निकलने का साधन है.
बाहर निकलने का साधन है. नेक्स्ट.
ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. मई चन्ना योगे न
ये इसके अंदर ये 20 बातों में जो भगवान कहते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मई चा अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, ये सबसे महत्वपूर्ण है. आगे
ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनंत शक्ति में, अनंत भक्ति में होता है. अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या लाभ करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ.
हाँ, तो टोटल कितने बातें हैं,
20.
उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो बाकी सब आचरण हो रहा है लेकिन 20वां अगर नहीं हो रहा है, 20वां कौन सा है,
भक्ति.
तो बाकी सब 19 बातें ठीक है.
लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें इसके अंदर समय विकसित हो.
तो हमने 12वां अध्याय में इस बात की चर्चा किया था. तो बहुत सारे गुण इसके अंदर जो वर्णन हुआ है वो 12वां अध्याय में भी है. जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो मालूम पड़ेगा.
श्रीमद् भागवत में 5,000 कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भवत्यकिंचन सर्वे गुणस्तत्व समापते स्वाहा।
ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतों में, जिसको याद करना चाहिए। बारहवां अध्याय का अगर वो बारह से मूल क्या है, बारहवां अध्याय का यही है कि जो भक्त है उनके अंदर ये सारे गुण विकसित होते हैं।
जिसने भक्त की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि आठवें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है।
वेरी गुड। तो ठीक है, अभी ये भक्ति प्राप्त करना है, सारे गुणों को मैं स्वीकार करूंगा, तो केवल भक्ति करने से सारे गुण आएंगे, लेकिन भक्ति भी करने के लिए मुझे सबसे पहला क्या करना होगा? वेरी गुड, गुरु ग्रहण करना होगा। बाद में
यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी अत्यावश्यक है। जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की एक क्रिया ही वास्तविक मार्ग है, इससे पहले जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। बिंदुता अमानित का अर्थ है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए।
ये अमानित्व में पहला क्यों लिखा हुआ है? व्हाई इट इज मेंशन्ड फर्स्ट? उसके बिना कोई गुरु के पास जाता ही नहीं है, और जाता भी है तो वो तद्विद्धि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवे नहीं माना जाता है, अहंकार वश कोई जाता है तो। इसलिए सबसे पहला क्या है, क्या होना चाहिए? अमानित्व। इसके पास अमानित्व ये है, वो निश्चित रूप में गुरु के पास जा सकता है, जिसके द्वारा वो गुरु का शरण लेते हुए भक्ति के अनुशीलन कर सकते हैं, तो बाकी गुण जो है वो क्रमशः उनके अंदर विकास हो जाते हैं। तो इसलिए अमानित्व ये पहला माना गया है।
तो गुरु के पास जाता है उसके अंदर किसके अंदर ये गुण विद्यमान है कि उसके अंदर अमान की?
हाँ, नहीं तो क्यों जाएगा कोई? व्यक्ति शरणागत हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो उनके पास नम्रता है तभी शरणागत हुआ, नहीं तो वो सोचता है कि मैं क्यों शरणागत हूं।
व्यक्तिगत तो ऐसा दिखने में नहीं आता, वो बहुत सारे यहाँ पे गुरु के शिष्य हैं।
हाँ, तो इसलिए जो जो शरणागति के भावना से गुरु के पास नहीं जाता है तो वो व्यक्ति को ये जो गुरु का दीक्षा ग्रहण करने का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। विल नॉट गेट दैट। तद्विद्धि प्रणिपातेना, प्रणिपातेना मतलब यही है। इस प्रकार सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, दो बहुत महत्वपूर्ण भाव महत्व चीज है, एक है संपूर्ण वैराग्य, दूसरा है संपूर्ण नम्रता। ने क्या कहा? नीच जाति नीच संघ खुविष्य कुय जय ममा, मैं नीच जाति का हूं नीच संघ का हूं, ऐसी भावना से गए थे सनातन गोस्वामी। जब तक इस प्रकार हृदय नम्र नहीं रहता है, उधर गुरु भक्ति का बीज बोने पर भी कितना भी पानी डालने पर भी वो उगता नहीं है बीज। पत्थर वाले जमीन में अगर बीज डाल के पानी डालेंगे तो उगेगा नहीं। तो ये भक्ति लता बीज उगने के लिए कैसा होना चाहिए? हृदय नामक जो जमीन जो है तो नम्र होना चाहिए, शुड बी वेरी सॉफ्ट।
हम बुद्धि के कारण अन्यों के सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो ये जानता है कि वो शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसन्नि चाहते हैं, तथा ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वो धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। यहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान ने वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी परीक्षा करे कि वो कहाँ तक उन्नत कर रहा है, उन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकते हैं।
नेक्स्ट, ये तो अमानित्व हो गया। नेक्स्ट,
अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना दिया जाता है। लेकिन
हाँ, अमानित्तम अडम्बित्तम दोनों साथ साथ में जाता है। हाँ, ढंब मतलब क्या है? एक होता है गर्व, जैसे असुरों का गुणों को वर्णन करते हैं, डंबो दर्पाभिमानस्य। एक होता है एक अहंकार, व्यक्ति को होता है, मान लो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है और सुंदर है वास्तविकता में, उसके ऊपर वो अहंकार हो जाता है, उसको मैं कितना सुंदर हूं, वो एक स्तर हुआ। लेकिन एक सुंदर नहीं है, एकदम कुरूप है, लेकिन फिर भी सोचता है कि मैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, इसको ढंबा बोला है, नहीं है, फिर भी वो सोचता है कि मैं आई एम नॉट, मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो डंब ये अहंकार है।
काल नहीं,
काल नहीं,
नहीं
साधुओं की बात वो डम्ब है, डम्ब है नहीं, लेकिन फिर भी वो दिखावा करता है। ये दिस इज कॉल्ड डम्ब, नेक्स्ट
अहिंसा। अहिंसा का समान अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। आत्मबुद्धि के कारण सामान्य लोग ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतः जब कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर को नहीं खाता, तब तक वो हिंसा करता रहता होता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस बंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है।
देखिए, अहिंसा का डेफिनेशन, ऐसा डेफिनेशन आपको कोई भौतिकवादी, मतलब इवन अन्य आध्यात्मिकवादी भी सोच नहीं सकते, अन्य आध्यात्मिकवादी भी इसके ऊपर विचार नहीं कर सकते, इस प्रकार का डेफिनेशन दे ही नहीं सकते। जब पशु को जब मारा जाता है, लोग बोलते हैं इसको हिंसा बोला जाता है, लेकिन एक भक्त का दृष्टिकोण में ये पशु का हिंसा इसलिए है क्योंकि उसका आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है, आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं कि उसके शरीर से खून आ रहा है और मर रहा है, नहीं, उसकी वजह से उसको हिंसा नहीं बोला जाता। एक व्यक्ति की आध्यात्मिक जीवन में बाधा पहुंचाना हिंसा बोला जाता है। अर्जुन ने क्या किया? भगवान के आदेश के अनुसार कुरुक्षेत्र में कौरवों को उन्होंने मारा। तो अर्जुन का ये क्रिया बहिरंगिक दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है हिंसा, लेकिन अस्तित्व उनको मारने से उनको सदगति प्राप्त हुआ कि नहीं? उसकी वजह से अर्जुन का मारना अस्तित्व में हिंसा हुआ। जैसे बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है तो मां उसको मारती है ताकि उसको वो गलत काम करने से बचाए, ताकि उसका अच्छा हो, तो और ज्यादा दुख ना आए उसको गलत काम करने से, उसके लिए कुछ दुख देती है। लेकिन मां का इस प्रकार बच्चे को दुख देना असलियत में वो अहिंसा है। क्यों? इससे और भयानक सा जो खतरा है उससे वो उनको बचा रही है। तो आध्यात्मिक जीवन से आध्यात्मिक मार्ग में किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाना जो है वो हिंसा है, और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना अहिंसा बोला जाता है। इसका उदाहरण और एक दिया जाता है, डॉक्टर रास्ते में कोई डॉक्टर जा रहा है, एक कार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, एक बेचारा जो है इसका पैर कटा हुआ है मरने की मोहब्बत पे, और डॉक्टर उधर रुक के देखा, देख के बोलता है ठीक है तुम क्लिनिक में आना बाद में देखभाल करता हूं, बोल के चला गया। तो डॉक्टर ने एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर की इस प्रकार की प्रवृत्ति है उसको हिंसा कहा जाता है। क्यों? वो उतर के वो कुछ उसको इलाज कर सकता है, करने की क्षमता होने पर भी, उसका दुखों से मुक्त करने की क्षमता होने पर भी वो डॉक्टर उस पेशेंट को इलाज नहीं किया, इसकी वजह से वो डॉक्टर की इस प्रकार की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? हिंसा बोला जाता है। ठीक है,
हिंसा। सहिष्णुता का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे, जो आध्यात्मिक ज्ञान की उम्मीद करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भौतिक स्वभाव है, यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्पपूर्वक पुरुष करते
बहुत सारे तकलीफें आती हैं। जो भी आध्यात्मिक जीवन में आप देखिए जितने भक्त हुए, जितने भक्तों का वर्णन है भागवत में अन्य जगह, तो सब लोगों के जीवन में दुख आए, सब लोग, प्रहलाद, कुंती महारानी, अंबरीश, पांडव, ध्रुव, जिन एक ऐसा भक्त का नाम लीजिए जिनका जीवन में बहुत तकलीफ ना आए, ऐसा कोई है? परीक्षित महाराज, हर व्यक्ति, एवरीबडी फेस इट। तो ये सब को सामना करते हुए फिर भी अपना कर्तव्य से भगवान की सेवा से युक्त रहने की बात जो है उसको सहिष्णुता कहा गया है। नेक्स्ट,
सरलता,
संतुष्टि,
आर्जव,
शांति, आर्जवन,
आर्जवों का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक शत्रु का उद्घाटन कर सके। यहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासना,
भक्तों की अनेकों अनेकों गुणों में चैतन्य महाप्रभु ये सरलता नामक गुण को अति प्रिय, अति पसंद करते हैं।
सरलता
सुलाई की सिद्ध से किया, कपड़ी व्यक्ति थोड़ा सा भक्ति को जल्दी स्वीकार नहीं कर सकता, शरणागति भावना सब नहीं। नेक्स्ट,
आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत करने के लिए आवश्यक है क्योंकि बिना तुम्हारे गुरु के लिए संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, इसलिए वो शिष्य को अपने आशीर्वाद दे सके, क्योंकि तुम्हारे गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अतः यदि वो शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रयत्न करने लगता है, भले ही वो विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं।
देखना चाहिए कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन कृते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शन, इस श्लोक में ये सेवया अति महत्वपूर्ण है। अस्तित्व में सिंटैक्स ऐसा है उसका, सेवया परिप्रश्नेन, सेवा करते हुए परिप्रश्न होना चाहिए, तो तब वो प्रश्नों का जवाब जब दिया जाता है तब वो जो ज्ञान है अंदर तक जाता है, नहीं तो केवल वो इंफॉर्मेशन मात्र हो जाता है। अंग्रेजी में दो शब्द है, एक है इंफॉर्मेशन, दूसरा है नॉलेज। एक है जानकारी, दूसरा है ज्ञान, इंफॉर्मेशन और जानकारी। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, वो सिगरेट पैकेट के ऊपर क्या लिखा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा है कि नहीं, लेकिन फिर भी पी रहा है। यानी उसको जानकारी है लेकिन ज्ञान नहीं है, जानकारी है लेकिन उसको। तो गुरु के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान वो केवल जानकारी मात्र रह जाता है अगर कोई सेवा नहीं करता है। वो जो सेवा है उस जानकारी को ज्ञान के रूप में परिणित करता है।
yes.
विज्ञान मतलब रियलाइज्ड नॉलेज, रियलाइज्ड नॉलेज। वो पढ़े बिना ही वो नहीं पिएगा, स्वाभाविक तरीके से नहीं पिएगा कोई। ज्यादा नहीं, ज्ञान और जानकारी हम लोग को ज्यादा शब्दों में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। शब्दों में ज्यादा, ये जो शब्द जो है उसके ऊपर ज्यादा हमको ये नहीं करना है। वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दैट दिस थिंग। इतना हद तक कि जान लीजिए कि एक है जानन अपि न जानन, जानते हुए भी नहीं जानना, उसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है। अरे जानकारी, ये शब्द कहीं भी कोई भी अलग अलग जगह अलग अलग चीज यूज किया जा सकता है, लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे हम सब जानते हैं कि शरीर, हम आत्मा है शरीर नहीं, फिर भी हम उसी
जानते हैं। हाँ, तो है ओनली
कोई सेवा का थोड़ा सा, सेवा आपने लिखा कि जब तक सेवा नहीं करता है तो सेवा को थोड़ा विस्तार में भाई, सेवा से मतलब हर समय जो गुरु मतलब सेवा से क्या तात्पर्य है।
सेवा मतलब उनका जो इंस्ट्रक्शंस को पालन करना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, सेवा मतलब वो है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट,
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता,
सेवा का मतलब प्रत्यक्ष सेवा ही होती है।
हाँ, अगर उनका इंस्ट्रक्शन है प्रत्यक्ष सेवा करो, वो इंस्ट्रक्शन अल्टीमेटली वापू और वाणी तो पूरा विशाल सब्जेक्ट है, बट अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। उनका अगर इंस्ट्रक्शन ये है कि आप मेरे प्रत्यक्ष सेवा करो, प्रत्यक्ष सेवा करो।
जैसे जैसे कभी कभी इंस्ट्रक्शन नहीं मानना भी सेवा होती है।
इंस्ट्रक्शन नहीं मानना भी सेवा होती है।
कभी कभी गुरु ऐसे आज्ञा देते हैं इसको नहीं मानने से गुरु की सेवा होती है।
बताइए एक एग्जाम्पल।
जैसे
जनरलाइज नहीं है, स्पेसिफिक केस है। उसके पीछे भी ये है कि गुरु की संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ मर्यादा को तोड़ा जा सकता है, लेकिन मेरी अपनी संतुष्टि के लिए और मर्यादा को मैं तोड़ूंगा। उसको आज्ञा को तिरस्कार की बात नहीं है। देखिए, एक होता है शब्द और शब्द के पीछे भाव, वो दोनों को स्वीकार किया जाता है। इट्स नॉट ऑलवेज भाव भाव प्रदान है। हाँ, जो व्यक्ति जो है वो बोलने पे एक फर्स्ट क्लास शिष्य होता है कि गुरु का मन को जान लो, चैतन्य मनोविष्णु फर्स्ट क्लास शिष्य रूप गोस्वामी गुरु की मन की इच्छा को जान के अपने आप कर लेता। गुरु जो है अपने इनसे प्रसन्न रहते हैं। और एक है जो सेकंड क्लास है, जब तक बोला नहीं तब तक वो चुप रहता है, बोलने के बाद करता है। तीसरा जो है बोलने पर नहीं करता। थर्ड क्लास, दिस इज द अभी शब्दों के खेल में मत आइए, डोंट कम टू दिस। जब कोई शास्त्र में ऐसे शब्द आता है उसके एक्सप्लेनेशन हम सुनेंगे, लेकिन एक स्थिति होता है एक व्यक्ति का, भले वो जानता है लेकिन फिर भी नहीं जानता है, उसको केवल जानकारी बोला जाता है। हाँ मैं जानता हूं सिगरेट पी रहा है, तो नहीं ये तो आपके लिए हानिकारक है। हाँ मैं जानता हूं, उसके उसको क्या बोला जाए, ही जस्ट हैव इंफॉर्मेशन। लेकिन असत में उसका सच में जानता तो पीता नहीं। ठीक है,
इसमें वो जानता है, जैसे आपने वहां का उदाहरण दिया ना, आपने याद आया जाना ना पी जाना सोच एक्चुअली जानता है लेकिन उनकी इंद्रियां
कंट्रोल में नहीं है, मजबूर हो जाता है, प्रश्न पूछा पूरा ऐसा मजबूर हो जाता है। वो जानने पर भी
उनको नॉलेज होता है तो
दिवस दैट इज काम ज्ञान को डक देता है। आवृत्तम ज्ञानम ये थी ना ज्ञान इन थी ना काम रूपे ने कौन। नेक्स्ट
आध्यात्मिक जीवन की जरूरत करने के लिए पवित्रता शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है कि नहर स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना पड़ता है। इस विधि से मन में से दूर कर्म की संचित भूत हट जाती
है। एक क्लियर है पवित्रता प्योरिटी। नेक्स्ट
जड़ता स्थैर्य। स्थैर्य का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नत करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्मसंयम, आत्मनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करो। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। ये असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्रिया तत्व के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीव है। यदि जीव पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीव का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतः नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद देने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहां तक नेत्रों का संबंध है उन्हें कृष्ण का सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सुनने में लगाना चाहिए। ये भक्ति की विधि है और यहां यह समझना होगा कि भगवद गीता केवल भक्ति के विज्ञान का उत्पादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवदगीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवदगीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं।
वेरी गुड, भगवद गीता में भक्ति के अलावा कोई और विषय नहीं है, योग शास्त्र है। कुछ लोगों का बहुत ही बातों का यही कहना है कि भगवद गीता में अनेकों प्रकार के भक्ति भी एक है, विवेक जैसे भक्ति फॉल्सी गो नित्य हम
अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना, इस शरीर को आत्मा। जब कोई ये जान जाता है कि वो शरीर नहीं है अपित आत्मा है तो वो वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो वैसा ही है, मिथ्या अहंकार की वर्षना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में वेदानंद उपनिषद 1:4:10 कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हूं कि ही आत्मभाव है। और ये आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था भी ये भी पाया जाता है। मैं हूं का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो मिथ्या अहंकार होता है।
अहंकार में मिथ्या अहंकार में डिफरेंस मालूम है ना? अहंकार मतलब क्या है? मैं हूं, आई एम समथिंग। इसको मिथ्या अहंकार मतलब शरीर के संबंधित पहचान। असली अहंकार क्या है? ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा, आई एम सोल, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, अहम ब्रह्मास्मि।
जब इस आत्मभाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयोग किया जाता है तो वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहाधिपति का त्याग करना ही होगा। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। ये भली बात समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतः हम जन्म तथा मृत्यु के पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्र में हुआ है, उनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को उनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन उनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के रूपों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगत करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता।
हाँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। प्रभुपाद जी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लाइक लिखते हैं, अनलेस वी हैव ए पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ दिस मटीरियल लाइफ कंसिडरिंग द डिस्ट्रेस ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज, देयर इज नो इम्पेटस फॉर आवर मेकिंग एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। पावरफुल लाइन है, वेरी वेरी पावरफुल लाइन। हमारा जो भक्ति में उत्साह को प्राप्त करना है या और प्रगतिशील रहना है तो ये गुण अति महत्वपूर्ण है। क्या है वो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का दोषानुदर्शनम, अनुदर्शनम, कॉन्स्टेंटली देखते रहना कि कितना दुख है संसार में। कभी कभी हम इसके ऊपर जब प्रवचन देते हैं लोग बोलते हैं कि भौतिक वाले लोग पूछते हैं कि आप ये भौतिक दुनिया को इतना निंदा क्यों करते हो और इसके अंदर दोषों को क्यों देते हो? बहुत सारा अच्छा ही है, उसको तो भी देखो, बहुत सारा अच्छा है भी ना, वो भी तो उसको भी देखो।
भगवान ने दुनिया रखी, इतनी सुंदर दुनिया रखी, इसको क्यों नहीं घूमना चाहिए?
क्या आंसर दोगे बताओ? क्या आंसर दोगे?
हमने तो ये आंसर इसका यही होना चाहिए कि भगवान के लिए, भगवान ने हमारे भोगना
है, भोगने के लिए। वो तो भौतिकवादी है, उसको कुछ मतलब ही नहीं है भगवान भोगते क्या होते, उसको मतलब नहीं, क्या देंगे।
वस्तु भोग करेंगे तो उसको सुख नहीं मिलेगा, दुखदायी नहीं।
हाँ दिस इज द पॉइंट, जब कोई व्यक्ति बोलता है संसार बहुत सारा अच्छी चीजें हैं, इसको भोग भोगने क्या जाता है, वो आप उसको डार्कर साइड को क्यों देखते हो, ठीक है दुख है लेकिन साथ साथ में कुछ सुख भी है, उसको क्यों नहीं, तब एक्सप्लेन करो, बताओ एक सुख का नाम बताओ।
जैसे हम खाते हैं कुछ भी सुख है,
हाँ तो वो श्लोक काम नहीं आएगा, पांचवा अध्याय का 22वां श्लोक क्या है वो, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नैव थे आद्यंतवंत, तो दिखाई पड़ रहा है बाहर बाहर से सुख है करके, लेकिन उसका वो क्या है, वो आगे आने वाला दुख का वो ये बीज है उसके अंदर, दुख यो नैव थे आद्यंतवंत कौंतया न तेषु रमते कुला। और प्रभुपाद जी के अनेकों लेक्चर्स ने केवल इसी बात के ऊपर है, कितना दुखमय है, कितना दुखमय है। आप कहीं भी प्रवचन देने के लिए फर्स्ट टाइम प्रवचन कहीं जाते हो, हमेशा इस बात के ओर बोलना होगा, आप इस बात के ओर बोलेंगे तुरंत तो जीव नम्र हो जाता है, सब लोग शांत हो जाएंगे, आपको सुनने बैठ जाएंगे, ये एक बड़ा झापड़ के बराबर है भौतिक वाद्य के लिए, बहुत कूदते रहते हैं, एक जोर से झापड़ मारे तो शांत हो जाता है, ये जन्म मृत्यु शराब आदि पावरफुल टूल है सबको शांत करने का, चाहे वो कोई भी हो रहा सब दुखी है। ऑलरेडी माया जो है आधा प्रचार कर चुका है, आधा प्रचार माया कर चुका है, खाली आपको जाके इतना बोलना है दुखी हो, इतना हद तक कि लोगों का उसके लिए थोड़ा सा पावरफुल हाथ चाहिए, वो पावर जो है वो शुद्धता से आता है। प्रभुपाद जी रास्कल बोलते थे सब लोग चुप शांति से बिल्ली जैसे बैठ जाते थे, हम आके बोले तो रिक्वायर दैट प्योरिटी स्ट्रेंथ, जितना हमारी शुद्धता है तो हमारी वाणी में उतना शक्ति भी है, और डिपेंड्स ऑन प्यूरिटी, प्यूरिटी इज अ फोर्स, जितना आप शुद्धता मेंटेन करेंगे हमारे मन में काम क्रोध इतना दूर रहता है, तुम्हारी वाणी में ऐसा शब्द रहता है ताकि व्यक्ति को सुनना ही पड़ेगा, यू हैव टू हियर।
ये फोर्स एक तो हमारी साधना के लिए है और दूसरा क्या हमारे अनुभव के लिए,
साधना मतलब ये नहीं कि आजकल का जन्म जन्मांतर का साधना है उसके ऊपर ही, हाँ अनुभव तो होगा ही ना, अनुभव भी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर साधना, साधना से ही अनुभव आता है, लेकिन अल्टीमेटली इज अ प्यूरिटी इज अ फोर्स, व्यक्ति को सुनना ही पड़ेगा, यू आर सफरिंग, तो एक जगह प्रोग्राम में गया था मैं, भक्तिदास महाराज को इन्वाइट किया प्रोग्राम, वो तो एकदम उनका तो प्रवचन पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, उनको जानते हैं उनको करीब से, कितने लोग जानते हैं उनको, मैं उनको जानता हूं, वो शक्ति को ऐसा बोल देते हैं तो हमको डर लगता अभी उठ के खड़े होकर मार ना दे लोग ये एक भक्तिगज महाराज है और एक है दूसरा जयद्वेद महाराज, इन दोनों का जो भी आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनाइज करने वाले आठ मिनट बढ़ जाता है, वो कुछ भी मुंह में बोल देते हैं। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि ये सब आप बोल रहे बहुत सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो सुख है संसार में, कुछ तो है, जैसे मैं खाता हूं जैसे करता हूं, दुख तो है लेकिन सुख थोड़ा सा है। तो मैंने कहा कि देन यू आर ए हॉग, इसका मतलब आप सुअर हो, सीधा मुझे एकदम ये हो गया, तो भारत कोई कुछ बुरा नहीं लगा कि बिकॉज इतना सारा दुख है और बीच में कहीं छोटा सा सुख मिलता है उसको ढूंढने के लिए जा रहे हो, ये किसकी प्रवृत्ति है? ईश्वर की प्रवृत्ति है। इतना कीचड़ है, गंदगी है, सब है, और जाके एकदम उधर ढूंढ रहा है कहां सुख है, ये किसकी प्रवृत्ति है? हॉग्स। तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। ही मेड हिम रियलाइज इट इज ट्रू। तो और एक लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट पूछा जय जय महाराज को, महाराज ये सही बात है, इतने सारे दुख है, लेकिन ये जब दुख भक्तों का होता है, भक्तों को ये दुख होता है, तो उनको मदद करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, सीधा मुझे बोला कि वो तो बात की बात है, पहले तुम खुद दुखी हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं इतना इतना नहीं है मेरा दुख। तो उसने उन्होंने कहा, तुम्हारे ही हाथ पैर इंद्रियां अपने मन वो तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तो कोई और तुम्हारी बात कैसे सुनेगा? योर ओन सेंसेस आर नॉट लिसनिंग टू यू, कोई और सुनेगा आपकी बात? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वे सफरिंग, कोई और से दुख क्या, अपनी इंद्रिया हमको दुख दे रहा है, हम जो करना चाहते करने नहीं देता है। दुख का दोष आना वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
जहां तक संतान अपनी तथा घर के विरक्त की बात है, इसका यह नहीं है कि इसके लिए कोई भावना ही ना हो, ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन यदि आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि कृष्णभावना मृत है, यदि कोई कृष्णभावना मृत से पूर्ण रहे तो वो अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्णभावना मृत की विधि अत्यंत सरल है, इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है, कृष्णा कृष्णार्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है, भगवद गीता या श्रीमद भागवत के जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है, और अच्छा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी हुआ। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे, परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावना विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर लेना चाहिए।
प्रभुपाद स्वयं प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे लिए। तो उन्होंने पूछा पत्नी से, आपको चाय चाहिए मैं चाहिए? तो तुरंत उन्होंने पत्नी ने कहा चाय चाहिए, तो छोड़ दिया पत्नी को। तो पारिवारिक जीवन में किस प्रकार जीवन व्यापन करना चाहिए, मैं इसको एक्सप्लेन किया। आरातिर, लेकिन फिर भी अनासक्ति अति महत्वपूर्ण है।
मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व निशालों कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वो समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश का स्वीकार किया, वो उनसे लड़ा और उनसे उनको और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सका है न दुखी। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं, मनुष्य को चाहिए कि उन्हें सहना सीखे। जैसा कि भगवद्गीता में उपदेश दिया गया है, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दिशाओं में समभाव बनाए रखे। सामान्यतया जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिश्चित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपस हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्त की नव विधियां।
नौ विधियां।
विपस हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्त की नौ विधियां।
ये कौन सा गुण है ये जो चल रहा है? आसक्तिर अनभिस्वंग पुत्रधार गृहादिषु नित्यंच समचित्तत्वम, वो चल रहा है। इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इवन माइंडेडनेस एडमिट्स प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट इवेंट्स। इष्टान नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु, उसका बारे में चल रहा है। और ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए नवदा भक्ति करना होगा। नेक्स्ट उसके बाद मई चानन्य योगी न भक्तिर अव्यभिचारिणी, उसका वर्णन बाद में करते हैं। अभी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन्म जनसंसदी, उसका वर्णन है। पढ़िए स्वाभाविक तरीके से, जब कोई आध्यात्म
स्वाभाविक है,
ये स्वाभाविक
है, स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वो ये परीक्षा करके देख ले कि वो अवांछित संगत के बिना एकांतवास करने में कहां तक सक्षम है। ये स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यस्त के खेलकूद या सिनेमा जाना या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वो ये जानता है कि ये समय का व्यर्थ कमाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवदगीता के अनुसार ऐसा शोधकार और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। ये एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवदगीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वो आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध।
ये कौन सा गुण का वर्णन है? आध्यात्म ज्ञान इत्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। नेक्स्ट यहां तक आत्म साक्षात्कार,
यहां पर इसी की संस्कृति जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहां पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्तियों की भी व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतः भक्ति योग में तो कभी नहीं। मतलब उसके क्या विशेषतः भक्ति योग में नहीं हो सकते आत्मा परमात्मा एक तो कहां हो सकते?
नहीं, भक्तियों के सिद्धांत के अनुसार भक्ति योग जैसे द इंडिविजुअल सोल एंड सुपर सोल के नॉट बी वन, एटलीस्ट नॉट इन द भक्ति कंसेप्शन। बहुत जब अनुवाद होता है तो पूरा ख्याल कहां से कहां ले, इट्स वेरी डिफरेंट। भक्ति कंसेप्शन, डिवोशनल कंसेप्ट ऑफ लाइफ, भक्ति की विचारधारा के अनुसार
भक्तम विचारधारा से नहीं हो सकते। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतः भक्ति शाश्वत नित्य है, मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 1.2.11 व्याख्या की गई है, वदन्ति तत्तत्त्व
तत्त्वम्
ज्ञानम्
अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मा। ठीक होने चलिए,
जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं, अगर मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद पर पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए, यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक सीधी भूख से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर हैं तो कुछ तीसरी पर हैं, किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वो ज्ञान के निम्न में भी रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लगी, इफ इफ समवन वांट्स टू compete with God, at the same time make advancement in spiritual knowledge. He is frustrated.
यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। ये स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा छुड़ाया जाता है, फिर भी वह ज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूं। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व यानी विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य के प्रति अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए।
और ये श्लोकों की आखिरी जो लाइन है, यानी 12वां श्लोक आखिरी लाइन, एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् अथो अन्यथा। एतद् ज्ञानम्, अभी जो वर्णन किया गया वो सब क्या है? ज्ञान। इसके अलावा अन्यथा, बाकी सब क्या है? पावरफुल सेंटेंस, पावरफुल स्टेटमेंट। कुछ भी इसके अलावा जो भी है वो सब अज्ञान है, केवल इसी को ज्ञान माना गया है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है इसको? एक बार मुझे बड़ौदा में मैं लेक्चर लिया था इसमें, बीएड कॉलेज, वो केस करके एक डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर एडवांस एजुकेशन, बीएड एमएड पीएचडी वाले सब रहते हुए प्रोफेसर लोग। तो मेरा लेक्चर इसके ऊपर आधारित है, दिस वाज बेस्ड ऑन दिस। कि आजकल स्कूलों में दिया जाता ना वैल्यू एजुकेशन, उसको क्या बोलते, नैतिक शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
मूल्यवान
नहीं, वैल्यू। एक क्लास स्पेसिफिक पीरियड रहता है, पीरियड में उनको वैल्यू एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन होता नहीं कभी। तो उधर मैंने लेक्चर दिया तो ये इसके ऊपर ही पूरा, हर एक गुण के ऊपर। तो लास्ट मैंने कहा इसके अलावा जो भी कुछ है वह अज्ञान है, यही ज्ञान है। एंड में मेरा कंक्लूजन था कि आप स्कूलों में वैल्यू एजुकेशन बोलते हो, लेकिन अस्तित्व में एजुकेशन मींस वैल्यूज। वैल्यू एजुकेशन फिर कुछ नहीं है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाने से उसको शिक्षा ही नहीं बोला जाता। उसको शिक्षा मतलब एक गुण, ये गुणों को बच्चे के अंदर या जीव के अंदर विकसित करना ही शिक्षा है। उसके अलावा कुछ भी है वो शिक्षा नहीं माना जाता डिटाने काल में। तो उन लोगों के तो एकदम बॉम्ब जैसा गिरा है।
ये तो आप इसको शिक्षा बनाने
ये सब पूरा सब छुपते। बाद में मैंने पूछा एनी क्वेश्चंस, तब एक प्रोफेसर खड़ी होगी क्या प्रश्न पूछती, देखिए क्या स्थिति हमारे आजकल शिक्षा जो टीचर लोगों का। स्वामी जी आई हर्ड दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस। स्वामी जी मैं सुनी हूं कि अज्ञान जो है वो आनंद का कारण है। अब ये कौन पूछ रहा है? टीचर, प्रोफेसर, जो टीचरों को पढ़ाती है। ऐसे दुर्गति में क्या ऐसा स्थिति है लोगों का। तब मैंने कहा एक भैंस है ना, भैंस, बहुत गर्मी लग रहा था भैंस को। भैंस को जनरली गर्मी ज्यादा कभी लगता है तो पानी चला गया, वो पानी भी नहीं है जाने के लिए। तो उधर उसने एक झाड़ देखा, वो झाड़ के नीचे गया, नारियल का झाड़ था, नारियल का पत्ता था ना, वो पत्ता का छांव में खड़ा हो गया। वो भैंस को ठंडक लगा, और देखा कि कौन ठंडक प्रदान कर रहा है, और उसको देखा उसको झाड़ दिखाई पड़ा, पत्ता दिखाई पड़ा, उसको खाने लग गया है। तेरोला की द बफेलो इज वेरी हैप्पी, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी लाइक दिस। वही इग्नोरेंस इज दिस। तो वो जो भैंस का जो आनंद है उसको आनंद करके मानते हैं, दैट इज द फिलॉसफी इग्नोरेंस इज दिस। सच में इवन अगर जैसे शिक्षा मतलब ये दिस क्वालिटीज जिसके अंदर ये गुण है, जो गुणों के परे और गुणों के नीचे वो एक श्लोक है जो तीनों गुणों से मुक्त है और तीनों गुणों से नीचे है। अच्छा तीनों गुणों से नीचे कर कुछ होता नहीं है, जड़ जड़ से जड़ पत्थर जैसा जिसका चेतना है। मतलब जड़ बोलना तो फिर होता नहीं ना, समझाने के लिए भैंस का होता रहती है, भैंस भी तो जड़ है एकदम।
उनको
पकड़ के सही बात। ये देखिए भारत में और भी जगह है, एक श्लोक है इसके अंदर, अगर कोई इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की विधि में संलग्न नहीं हो पाता है, कुछ लोगों के लिए है कि बस इंद्र तृप्ति करते करते जाए, जब फ्रस्ट्रेट होगा तब ले सकता है। भागवत में श्लोक रजनीश के सिद्धांत को स्थापना करने वाला, लेकिन वो जो चीजें हैं वो इसलिए है कि तुम इतना थर्ड क्लास से जाओ खत्म करो, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं, ये भागवत का तुम श्रोता नहीं हो, जाओ। ये बात को उल्लेखन करने के लिए वो विधि नहीं है उसको, उन लोगों को तिरस्कार करने के लिए कि एकदम लो क्लास बताने के लिए उनको, मैं ऑडियंस नहीं के पुरान इस बार ऐसा ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ये श्लोकों को उच्चारण करके जानिए, और बाकी और श्लोक है। वैसे सुबह थोड़ा सा माइंड गर्म हो गया तो फिर आज के लिए थे, आज रीड 13 चैप्टर नाइसली, कल उसका बाकी के श्लोकों का सेक्शंस बता जाएंगे ज्यादा विस्तार में। अपने को ईश्वर समझते हुए आध्यात्मिक प्रगति करना ये फ्रस्ट्रेशन का कारण है। नौ पंद्रह ओ, ये तो दूसरा है, अहम अंग्रोपासन है, ये तीन प्रकार के जो उपासना है। हाँ वही ना, जो तीन तीन प्रकार का उपासना है, वर्शिपर्स अभी तक भगवान ने क्षेत्र क्या है समझाया। इदम शरीरम कौन्तेया क्षेत्रम इत्यभिधीयते। क्षेत्र क्या है? ये शरीर। ये तत्यो वेत्ति तम प्राहु, इसको जो जानता है वो कौन है? क्षेत्र। बाद में उन्हें ये भी कहा कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्युत सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, और एक क्षेत्रज्ञ है, वो कोई और नहीं है, मैं स्वयं हूं। और जी